आलवारों के बारे में कई एकादशियों से चर्चा चल रही है, तो पिछले बार आठवें नंबर के आलवार पेरी आलवार के बारे में चर्चा हो रही थी। श्री संप्रदाय में उनको गरुड़ जी का अंशावतार माना जाता है। कलयुग के पहले 50 साल के भीतर ही उनका जन्म हुआ और वो रहे श्री विल्लुपुत्तूर नाम के गांव में, जहां की श्री वटपत्रशाही भगवान की सेवा वो करते रहे। जैसे कि ये बतलाया गया था, वटपत्रशाही मतलब जो वटवृक्ष के पत्र के ऊपर शयन करने वाले भगवान। बचपन से ही वो बड़े शुद्ध भक्त थे वटपत्रशाही के, भगवान श्री कृष्ण के, उनकी सेवा करते रहे। और उनकी विशेष सेवा ये थी कि वो भगवान के लिए फूलों की माला बनाते थे। अपने पास उनको उन्होंने एक बगीचा बनाया हुआ था, उस बगीचे में फूल उगाया करते थे, उन फूलों से फिर माला बनाया करते थे और बड़ी शुद्ध भावना से उन फूलों को बनाकर उगाकर माला बनाकर फिर बड़े भक्ति भाव से वो भगवान को ये अर्पण किया करते थे। तो आपको याद होगा कि इष्ट गोष्ठी में भी हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि इन आलवारों से प्रेरणा प्राप्त करके कैसे हमें भी भगवान की सेवा के लिए, श्री श्री राधा गोकुल आनंद गौर निताई और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा के लिए अच्छे से अच्छे फूल और फूलों की माला अर्पण करने चाहिए। अभी यहां मंदिर में थोड़े फूल तो हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सारे फूल भक्तों के द्वारा उगाए जा सकते हैं तो इसमें कितना और भाव बढ़ेगा, भगवान और कितने प्रसन्न होंगे। इस समय तो हम सारे फूल, ज्यादा से ज्यादा फूल जो है बाहर से खरीद के लाते हैं, परंतु अगर हम सब ने भक्ति भाव से इन फूलों को उगा दिया मंदिर में भी और अपने अपने घरों में भी, तो फिर हम विचार कर सकते हैं कि भक्ति भावना की वृद्धि कितनी हो सकती है। तो वैसे भक्ति के कई अंग हैं, उनमें से फूलों की सेवा यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए फूलों को उगाने के लिए सीखना यह भी एक कला है जो कि हमें भक्ति में सीखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि रसोई करना यह भी एक कला है, भक्ति की कला है। करताल बजाना, मृदंग बजाना या गीत गाना भगवान के लिए, तो तरह तरह के कलाएं होती हैं। भगवान की श्री मूर्ति का श्रृंगार करना, तो जहां तक हो सके इन अलग अलग कलाओं को सीखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और अन्य जो भी कलाएं हैं उनको भी भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई अच्छी तरह से चित्र बना सकता है तो ये कला भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल की जा सकती है। तो पुरातन काल से ये ब्राह्मणों का कार्य रहता था कि हालांकि वो वेदों का पाठ पठन किया करते थे, परंतु साथ साथ ऐसे भी कार्य किया करते थे। और पेरी आलवार अपना जीवन भर यही कार्य करते रहे। पूरा जीवन उन्होंने केवल उस उद्यान में दिया। वैसे हालांकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, फिर भी इतना शास्त्रों का ज्ञान नहीं था उनके पास। लेकिन फिर भी पिछली बार हम सुन रहे थे कि जिस व्यक्ति के पास भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति होती है उसके पास सारा ज्ञान हो जाता है। अलग से उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, कि हमें सोचना चाहिए कि बस भक्ति ही बहुत है तो हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पेरी आलवार तो वो भगवान के नित्य पार्षद गुरु जी के अवतार माने जाते हैं, शुद्ध भक्त थे भगवान के। लेकिन हम सब तो अपने आप को भगवान के पार्षद या शुद्ध भक्त नहीं मानते, नहीं मान सकते हैं। तो हम सब तीन गुणों के अधीन हैं, तो हमें अवश्य हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए, हमारी श्रद्धा की वृद्धि के लिए श्री प्रभुपाद जी की किताबों को बारंबार पढ़ते रहना चाहिए, रोज नित्य नियम से पढ़ना चाहिए। तो हालांकि पेरी अलवार ने ऐसे पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी जब उस पांड्य देश के राजा जिनका नाम था वल्लभ देव, उनके दरबार में प्रतियोगिता हुई तर्क के लिए, वाद के लिए, जो कि शास्त्रों के ऊपर आधारित है, उसमें पेरी अलवार भी चले गए। वैसे राजा वल्लभ देव जब एक बार अपना वेश बदल कर गए थे अपने राज में घूमते, तो उन्होंने एक ब्राह्मण से मुलाकात की थी, और उस ब्राह्मण से पूछताछ करने के बाद उस ब्राह्मण ने उनको बताया कि वास्तव में मनुष्य जीवन केवल इस संसार के जो प्राप्त होने वाले चीजें हैं उनके लिए नहीं बिताना चाहिए, बल्कि जो इस संसार के परे है उस चीज की प्राप्ति के लिए हमें बिताना चाहिए। तो जब अपने कुल गुरु से उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमें बताइए कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उस समय उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसके लिए ऐसे सभा बुलाई जानी चाहिए जिसमें हमारे राज्य के सारे बड़े बड़े विद्वान पंडित इत्यादि आने चाहिए, और फिर आपस में उन सलाह मशवरा करके जो वो निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे वही सही होगा। तो जगह जगह से पंडित आने वाले थे। उधर पेरियालवार के सपने में स्वयं वटपत्रशाही आए और उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए, लेकिन पेरियालवार ने कहा कि ये तो बड़े विद्वानों की सभा है, मैंने तो कभी शास्त्र पढ़े नहीं, वेद क्या है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तो ऐसे अगर व्यक्ति कोई वहां चले जाए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ये उचित नहीं है, कोई विद्वान व्यक्ति को जाना चाहिए, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी जाके वहां क्या करेगा। देखिए मेरी उंगलियां, देखिए जो बगीचे में काम करके जो औजार हैं, तो उनसे मेरे उंगलियां कितनी कट गई हैं, तो मैं इस तरह का आदमी हूं, कोई ऐसी सेवा मुझे बोलिए तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप मुझे बोल रहे हैं कि जाकर एक बड़े विद्वानों की सभा में जाकर शास्त्रों का जो मर्म है वो प्रस्तुत करो कि विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति ही सार है, ये मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम्हारा काम है मेरे आदेश का पालन करना, तो जाओ आगे जाकर तुम केवल वहां पर बात करो, आगे की बात मैं देखता हूं। तो उसी प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव पद्धति यही है कि हम हर सेवा के लिए तैयार हो जाएं। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम योग्य नहीं हैं। एक दृष्टि से ये सही भावना है, वैष्णव अपने आप को कभी भी किसी भी अच्छे कार्य के लिए योग्य नहीं समझता है। वो सोचता है कि मेरे में कोई ऐसे गुण नहीं है, मेरे में कोई पात्रता नहीं है कि मैं ये सेवा कर सकूं। जैसे कि समझ लीजिए, अर्चा विग्रह की सेवा करना, भगवान की श्रृंगार करना, ये क्या कोई साधारण बात है? या आप बाहर जाके भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बोलना, किसी को सुनाना, क्या हम इसके भी योग्य हैं? अगर कोई हमें व्यक्ति पूछे कि अगर क्या आपने भगवान का साक्षात्कार किया है, क्या आपने वास्तव में आपके मन को, इंद्रियों को वश में किया है, आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, तो अगर आपको नहीं हुई है तो आप कैसे बोल सकते हैं हमें? कई बार हमारे भक्तों से ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, परंतु भगवान का आदेश है कि हम अपनी ओर से नहीं बोलते हैं, हमारे पूर्वजों की ओर से, पूर्वज आचार्यों की ओर से हम बोलते हैं, उनका आदेश हमें है कि तुम जाओ कृष्ण कथा करो। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है तार गुरु तार ए देश, गुरु हो ना तार ए देश, कि तुम मेरे आज्ञा के ऊपर गुरु होके इस सारे देश को तार लो, जिसे भी देखो उसे कृष्ण के बारे में उपदेश करो। तो हम प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में आकर हम श्रवण करते हैं, और जितना हम समझ लेते हैं उतना हम समझाते हैं दूसरों को, तो इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। भले हम परिपूर्ण न हो, हमारे अंदर भले ही कितने दोष क्यों न हो, अगर हम हृदय से इन दोषों का निवारण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हों, अगर हम जानबूझ के इन दोषों को नहीं बढ़ा रहे हों, हम वैष्णव गुणों का अनुशीलन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हों और जैसे है वैसे इस वैष्णव तत्व को प्रस्तुत करने की का प्रयत्न कर रहे हों, तो जो हम बोल रहे हैं उसमें वो शक्ति होगी, क्योंकि उस वाणी को हम जैसे है वैसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं, वाणी में कोई दोष नहीं। और जितनी शुद्धता से हम प्रस्तुत करेंगे उतनी उसमें शक्ति बढ़ेगी, परंतु फिर भी हमारे हृदय की भावना को भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं, वो हर एक व्यक्ति के हृदय में विराजे हैं, इसलिए जब हम कोई कृष्ण की बात उनको बताते हैं, कृष्ण भगवान उनके हृदय में स्थित होकर उनके हृदय का परिवर्तन करवा सकते हैं। तो हम जब किसी दूसरे को प्रचार करते हैं और अगर वो कृष्ण भक्त बन जाता है या उसकी भगवान की भक्ति में श्रद्धा बढ़ जाती है, तो वो हमारा श्रेय नहीं है, वो भगवान का श्रेय है कि भगवान उसके हृदय में बैठकर भगवान उसका हृदय का परिवर्तन कर रहे हैं, भगवान उसको श्रद्धा दे रहे हैं। फिर हमारी भूमिका इसमें क्या है कि भगवान हमारे प्रयत्न से आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके हृदय में श्रद्धा निर्माण करने की बात ये भगवान का काम है, उसको किसी बात को हृदय में या बुद्धि से समझाना ये भी भगवान का काम है। परंतु भगवान देखते हैं कि ये भक्त कुछ कहना चाहता है मेरे बारे में, तो मैं इसलिए उस दूसरे आदमी के मन में बुद्धि में कुछ ऐसी बात ऐसी श्रद्धा निर्माण कर दूंगा जिससे कि वो भी भक्त बन जाए। तो हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, परंतु हमारे पूर्वज आचार्यों के भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर उनके आदेश के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो एक शिक्षा है हम पेरियालवार के इस घटना से हम सीख सकते हैं। तो ऐसे तुरंत अपने स्वप्न से जागकर वो चले गए और फिर उन्होंने ऐसे अद्भुत प्रवचन वहां पर दिया, सारे वेदों का जो निष्कर्ष उन्होंने प्रस्तुत किया, हजारों श्लोक उन्होंने कहे और सभी लोग वहां पर आश्चर्यचकित हो गए। फिर वहां पर उनका बड़ा गौरव हुआ, उनको विजयी घोषित किया गया, राजा वल्लभ देव भी उनके शिष्य बने। राजा वल्लभ देव और अन्य पंडितों ने फिर उनका सम्मान किया, उनको एक हाथी के ऊपर बैठाकर एक जुलूस निकाला गया सारे शहर भर में, बहुत तरह तरह के वाद्य बजने लगे, सारे अन्य ब्राह्मण उस हाथी के सामने आकर वेदों के मंत्र का उच्चारण करने लगे और पेरी अलवार का गुणगान करने लगे। लेकिन पेरी अलवार के मन में तनिक भी घमंड उत्पन्न नहीं हुआ, वो नम्र ही रहे, अपने हृदय में केवल भगवान को ही श्रेय देते रहे कि आप ही बोलने वाले हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। जैसे कि जब बलदेव विद्याभूषण जो कि हमारे परंपरा में एक बहुत ही बड़े आचार्य रहे हैं, उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर गौड़ीय वैष्णव टीका लिखी और उन्होंने इसका श्रेय जयपुर के गोविंद देव को दिया, क्योंकि उनकी कृपा से उनके आशीर्वाद से यह संभव हुआ, इसलिए उन्होंने इस टीका को गोविंद भाष का नाम दिया। तो इसी प्रकार से जब गुणगान हो रहा था पेरी अलवार का, तो उसी समय उन्होंने साक्षात भगवान श्री विष्णु का दर्शन किया जो कि गरुड़ के ऊपर सवार होकर लक्ष्मी देवी के साथ और अन्य पार्षदों के साथ वहां पर आए थे। भगवान क्यों आए थे? क्योंकि भगवान देखना चाहते थे कि मेरा भक्त का गौरव हो रहा है, किस प्रकार से मेरे भक्त का लोग सम्मान कर रहे हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जितना आनंद कोई भक्त लेता है भगवान श्री कृष्ण के गौरव में, जब अन्य लोग भगवान की स्तुति करते हैं तो भक्त को कितना आनंद आता है, उससे ज्यादा आनंद भगवान को आता है जब वो देखते हैं कि उनके भक्त की स्तुति हो रही है। तो भगवान स्वयं वहां पर आए और तुरंत जैसे ही पेरी अलवार ने उनको देखा, और तो कोई लोग नहीं देख पाते थे पा रहे थे, केवल वही देख सके, तो अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। हालांकि संभलना बहुत मुश्किल हो गया था जब उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर उन्होंने जो उस हाथी के गले में जो घंटी लगाई हुई थी, घंटियां थी, उनको लेकर उनको करताल की तरह लेकर कीर्तन करना शुरू कर दिया, भगवान का गुणगान करना शुरू कर दिया। और स्वाभाविक रूप से उनके हृदय की जो भावना है वो प्रकट हो गई एक सुंदर कविता के रूप में। जिसका नाम है तिरुपंडाल। इसका मतलब है ये एक तरह का आशीर्वाद है। ये बहुत अद्भुत बात है इस प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना नहीं इस कविता के बारे में, कि अन्य जो कविताएं होती हैं जो भक्त लिखते हैं वो भगवान के गुणगान करते हैं, लेकिन इस कविता में पेरी अलवार जो है वो भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि इस समय वो वात्सल्य भाव में है। तो वहां थोड़े बहुत हम पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिए भगवान को, क्या उन्होंने कविता लिखी इस तिरुपालंडु में। पालंडु मतलब चिरंजीवी भव, तुम बहुत लंबे लंबे साल जियो। तो भगवान को वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम बहुत लंबे साल लंबी उम्र जियो तुम, ऐसी प्रार्थना ऐसा आशीर्वाद जो है वो दे रहे हैं पेरियालवार। तो कहते हैं इस तिरुपालंडु में जिनके की 12 श्लोक हैं, वो कहते हैं कि बहुत बहुत लंबे साल, केवल लंबे साल नहीं हजारों हजारों साल, केवल हजारों हजारों साल नहीं करोड़ों 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 अरबों साल आपके चरण कमलों के का सौंदर्य जो है वो बना रहे, वो सुरक्षित रहे। हे बादल के रंग के जो स्वामी हैं, भगवान हैं जिन्होंने आपके कंधों से उन मल योद्धाओं का विनाश किया था, अर्थात चाण और मुष्टिक इत्यादि। और फिर वो कहते हैं कि न केवल आप, लेकिन आपके साथ में हम सब भक्तों को भी हम यही प्रार्थना, हम यही आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा हम जिएं, क्योंकि आपके भक्त आपसे अलग नहीं किए जा सकते। जहां भगवान है उनके भक्त हैं, जहां भक्त हैं वहां पर भगवान है। तो अगर भगवान को करोड़ों करोड़ों साल जीना है तो फिर भक्तों को भी तो जीना चाहिए, तो भक्तों को भी तो करोड़ों करोड़ों साल जीना चाहिए। तो भक्तों को करोड़ों साल जीने का मतलब ये नहीं कि ये भौतिक शरीर बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्री जान लो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर का नाश कभी नहीं होगा। भक्तों का शरीर का नाश भी हो जाता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, परंतु इनकी भक्ति भावना कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए भक्ति का विनाश कभी नहीं होता और वही आत्मा आगे चल के भी भगवान की भक्ति करता रहेगा। और फिर वो कहते हैं विशेष करके जो श्री है लक्ष्मी देवी हैं, जो कि आपके वक्षस्थल में निवास करने वाली एक आभूषण है, वो भी करोड़ों करोड़ों साल आपके साथ में जिए। लक्ष्मी देवी को भी वो वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और आगे कहते हैं साथ साथ में आपके जो अस्त्र हैं, जैसे कि ये तेजस्वी धार वाला जो सुदर्शन चक्र है, वो भी आपके साथ में हमेशा सुरक्षित रहे, उसका भी कभी नाश नहीं हो। साथ साथ में आपका जो शंख है, जिसकी ध्वनि जो युद्ध भूमि में अलग अलग जो अस्त्रों के ध्वनि को पार करके सबसे ऊंची आवाज में सुनाई देती है, ये पांच जन्य चक्र ये भी सदा जिए। हम तो जानते हैं वैष्णव होने के नाते कि भगवान के अस्त्र, भगवान के वस्त्र, भगवान की सामग्री सब कुछ चेतन है, सब सब इन सब का व्यक्तित्व है और इसलिए जीवित हैं। भगवान के धाम में शांत रस में इनकी सेवा करते हैं। हम बलराम जयंती के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान की सेवा के लिए बलराम जी ने अपने आप को विस्तार किया है अलग अलग रूपों में। उनकी शैया बने हैं, उनके कपड़े बने हैं, उनके आभूषण बने हैं, उनके इत्यादि, बल्कि सारा गोलोक वृंदावन, सारा वैकुंठ धाम बलराम जी बने हैं भगवान की सेवा के लिए। तो पेरी अलवार यहां पर कहते हैं कि ये सारे चीज, सारे भक्त जो हैं, ये आपके अस्त्र, आपके सामग्री जो हैं, ये सब करोड़ों साल जिए। और फिर आगे सबसे घोषणा करते हैं कि हे आप सब जो कि भगवान की सेवा करने के लिए योग्य हैं, आगे आइए, सामने आइए, चंदन धूप गंध आदि सब लेकर भगवान की उपासना के लिए आप चले आइए भगवान की सेवा में, हम साथ साथ करते हैं। लेकिन याद रखिए, हम उन लोगों को हमारे बीच में नहीं लेंगे जो कि किसी राजा के या अन्य किसी व्यक्ति की सेवा करता है अपने भोजन के लिए, जो दूसरों के काम में लगे हुए हैं, दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को हम हमारे बीच में नहीं प्रवेश देंगे। वो कहना चाहते हैं कि केवल हमें कृष्ण भक्त चाहिए, अन्यों की सेवा करने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर भी प्रार्थना करते हैं, विफल सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। वो कहते हैं कि विफल सेविनु, विफल निष्फल व्यर्थ मैंने समय गवाया, क्या किया, बिना कोई वास्तविक लाभ के, बिना कोई फल के मैंने ऐसे लोगों का की सेवा की है जो कि कृपण है, जो दुर्जन है। दो प्रकार के जन होते हैं लोग, एक है सज्जन और दूसरे हैं दुर्जन। सज्जन वो होते हैं जो सत जन, जो सत के मार्ग में चलते हैं, और दूसरे होते हैं जो दुष्ट होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, दुर्योधन। तो जो दुष्ट जन लोग होते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों की सेवा करके कृपण होते हैं, उनका हृदय बड़ा छोटा होता है, ये लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, इनके हृदय में कोई ऐसी अच्छी भावनाएं नहीं होती, वैष्णव गुण नहीं होते जैसे कृपा प्रेम इत्यादि नहीं होता। हम वास्तव में देखते हैं कि आजकल सब जगह ऐसे ही कृपणों के दुर्जनों की सेवा करनी पड़ती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं विफल सेविनु कृपण दुर्जन, मैंने भी मेरा ऐसा सारा जीवन गंवा दिया है, किसके लिए, ऐसे कृपणों के दुर्जनों की सेवा करके, और किस लिए मैंने सेवा किया था, चपल सुख लव लागिरे। चपल सुख, चपल सुख मतलब जो बहुत ही क्षणिक सुख है, जो चंद समय के लिए, क्षणों के लिए रहेगा, ऐसे सुख के लिए मैंने ऐसे दुर्जनों की सेवा की, उनका संग किया, उनको यस सर गुड मॉर्निंग सर कहा, नमस्कार कहा, उनकी सेवा करते रहे, उनकी स्तुति करते रहे, तो इस प्रकार से मेरा सारा जीवन बीत गया। कहने का मतलब है कि दुर्जनों की, कृपणों की, इन संसार के लोगों की सेवा करने से हमें क्या प्राप्त होगा, ज्यादा से ज्यादा ये चपल सुख, ये क्षणिक सुख प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमने भगवान की सेवा की, तो क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, तो इसलिए जो सुख उनकी सेवा से प्राप्त होगा वो भी शाश्वत होगा। इस संसार के व्यक्तियों की सेवा करने से हमें शाश्वत आनंद नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जिनकी सेवा हम कर रहे हैं वो भी शाश्वत नहीं है। इस पृथ्वी लोक की बात तो दूर है, लेकिन देवी देवता गण भी, उनकी सेवा करने से भी हमको सच्चा आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि देवतागण, उनके लोक, उनके वरदान और उनके उपासक सभी नष्ट होने वाले हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, उनके भक्त और उनकी भक्ति, ये तीनों ही शाश्वत है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैष्णव सिद्धांत है कि भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीन चीजें शाश्वत, और इनका संबंध है, इनके बारे में सब कुछ शाश्वत है। तो यहां पर पेरियालवार कहते हैं कि हम उन लोगों को हमारे बीच में नहीं लेंगे जो कृपणों की, दुर्जनों की सेवा करते हैं केवल चपल सुख के लिए। अगर कोई व्यक्ति कृपणों की, दुर्जनों की सेवा करता है, इसका मतलब वो चपल सुख के पीछे भाग रहा है। लेकिन हमें ऐसे लोग चाहिए हैं जो पूरी तरह से शरणागत है, केवल अपने दाल रोटी के लिए वो कृपणों की सेवा नहीं करते हैं। तो फिर दाल रोटी कैसे मिलनी चाहिए, वो आगे चल के पेरियालवार बताने वाले हैं। और वो कहते हैं हम जो कि सात जन्मों से इनके अलावा किसी और की सेवा नहीं करते हैं, आप सब हम सब के बीच में आइए, और हम इतने सालों से श्री राम उनकी स्तुति करते आए हैं जिन्होंने युद्ध में उस दुष्ट राक्षस का वध किया और लंका का विनाश किया। फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि आइए आइए, आप सब आइए, आप अन्य सारी इच्छाओं को त्याग दीजिए, इससे पहले कि आप इस दुख के सागर में खो जाएं, इससे पहले आपके होश ठिकाने आने चाहिए, जल्दी हम सबके बीच में आ जाइए। अगर आपकी इच्छा है थोड़ी सी भी, तो जल्दी से चले आइए हम सबके बीच में। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो इस दुख के सागर में खो जाएगा। ये सागर इतना विशाल है, इतना बड़ा है, कि कोई भी व्यक्ति एक बार सागर में गिर पड़ा तो बस क्या उसके लिए गुंजाइश है। कोई व्यक्ति सागर में तैरते हुए उसके पास अगर कोई नौका आ जाए और उस नौके से व्यक्ति हाथ नीचे दे दे कि आओ, हाथ पकड़ के ऊपर आओ, नौके में आ जाओ, तुम बच सकते हो, वो व्यक्ति इस मौके को खो देता है, तो फिर क्या किया जा सकता है। अन्य सारे बड़े सागर में उसके लिए क्या उपाय है, क्या आशा है। तो इसलिए भक्तों का संग ही हमारे लिए एकमात्र उपाय है जिससे कि सारे दुख के सागर से हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो हम खो जाएंगे इस दुख के सागर में। और वो कहते हैं, आइए जिनको भक्तों का संग करने का की थोड़ी भी इच्छा है, आइए हमारे साथ भगवान का गुणगान कीजिए, जिससे कि सारे गांव में और सारे शहरों में ये पता चले। और आइए आप भी घोषणा कीजिए कि भगवान का को चिरंजीव वो सदैव जीते रहें। आगे वो कहते हैं कि हे आप सब जो कि उस समाज के हैं जो कि ऋषिकेश के सेवक हैं, आप सब यहां पर जल्दी से चले आइए और उनके पवित्र शुभ नामों का उच्चारण करते करते इस विचार को त्याग कीजिए मैं और मेरा। जो व्यक्ति मैं और मेरा इस चक्कर में, जनस्य मोहो यम अहम ममेति, इस चक्कर में फंस जाता है वो कभी भगवान की उपासना नहीं कर सकेगा। जनस्य मोह, मोह ये कौन सा है, अहम और मम, मैं और मेरा, भागवत ऐसे कहता है। तो पेरियालवार भी इसी बात को कहते हैं, तो इस अहम और मम इन दो चीजों के चक्कर में नहीं पड़ो, केवल भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करो और कहते रहो कि भगवान श्री कृष्ण हजारों हजारों साल जिए, ऐसी घोषणा करते हुए हम सब के साथ में आओ। मैं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ऐसे 7 पीढ़ियों से हम निरंतर उनकी सेवा करते आए हैं, जो कि श्रवण नक्षत्र के समय, जबकि असुर लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, उन्होंने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप जैसे असुर का वध किया। तो ऐसे भगवान हमेशा जिए, हमेशा जिए, आशीर्वाद देते हैं, गुणगान करते हैं, चलो हमेशा के लिए जियो आप। हमारे सारे जो कुटुंब हैं वो सब केवल आपकी सेवा करते हैं, जो कि उस चक्र के निवास हैं, जो कि अनंत कोटि सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशमान है। और मैं आपके गुणगान करता हूं, मैं आपके लंबे आयु के लिए आशीर्वाद देता हूं, जिन्होंने कि उस चक्र को आदेश दिया था कि जाके उस दुष्ट बाणासुर का वध करे। बाणासुर कौन था? बाणासुर असुर था। बाणासुर के बारे में आपने क्या पढ़ा है कृष्ण किताब में, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम किताब में? उसके बहुत शक्तिशाली था, वो शिवजी का उपासक था और शिवजी ने उसे बहुत शक्ति प्रदान की थी। लेकिन आगे क्या हुआ? हाँ, उनकी पुत्री का नाम क्या था? उषा। और अनिरुद्ध जो है, जो कि प्रद्युम्न के पुत्र थे, और प्रद्युम्न जो कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र थे द्वारका में, अनिरुद्ध उषा से विवाह करना चाहते थे, और बल्कि उषा अनिरुद्ध से विवाह करना चाहती थी, और अपने योग शक्ति द्वारा उषा ने अनिरुद्ध को द्वारका से अपने घर में ले आए, अपने महल में, निवास स्थान में। जब बाणासुर को पता चला तो उसने गिरफ्तार कर लिया, तब श्री कृष्ण ने आक्रमण किया और बाणासुर की हत्या कर दी। तो इस घटना की, इस लीला का स्मरण कर रहे हैं पेरियालवार। और फिर वो कहते हैं कि आप हमेशा के लिए जिए, मैं आपसे आशीर्वाद देता हूं, आप जो कि हमें हमेशा घी में बनाए हुए भोजन खिलाते हैं, साथ साथ आप जो कि हमें निरंतर आपकी सेवा देते हैं, हमेशा आपके तांबूल प्रसाद को मेरे हाथों में ग्रहण करते हैं, और आप जिनका जो फूलों का माला जो है वो मैं स्वीकार करता हूं जब आप उसको त्याग देते हैं, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद जब आप त्याग करते हैं उसका प्रसाद मैं ग्रहण करता हूं, आपके तुलसी की माला फिर मैं प्रसाद के रूप में, निर्माल्य के रूप में स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार से आपके जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरण कमलों की सेवा और उन्होंने बताए हुए आदेश के अनुसार मैं आपकी सेवा करता हूं, और इसलिए आप हमेशा लंबी आयु जिए। तो पेरियालवार यहां बताते हैं कि भक्तों की पहचान क्या है, कि उनको बताए हुए सेवा वो जैसे है करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं भक्तों के बारे में। यहाँ ये भक्ति की कलाएं भक्तों की कविताओं के माध्यम से हमें पता चलते हैं। जिस दिन से हे प्रभु मेरा आपके साथ संबंध हो गया मंत्र के द्वारा, अर्थात जिस दिन से हरि नाम मुझे मिल गया, तो फिर क्या हुआ, हम आप सबके गुलाम बन गए और आपसे अलग नहीं हो पाए। और आपके गुलाम होने से ही तुरंत हमारे मन में इस संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई। इस संसार से हमें कुछ और लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का भक्त हो जाता है, विरक्ति की भावना उसके मन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि भागवत में बताया गया है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम जयत अहितुकम, कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है भक्ति योग प्रयोजित है, तो जनयत्यु आशु वैराग्यम, तो बहुत ही जल्दी ज्ञान और वैराग्य ऐसे हृदय में, व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति अपने हृदय से भक्ति कर रहा है सिंसियरली, तो उसको कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कब मैं विरक्त हो जाऊंगा। कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि कब हमारे हृदय से ये आसक्ति चली जाएगी। तो आसक्ति चली जाएगी अगर हमने अच्छी तरह से भक्ति की। तो फिर आगे वो कहते हैं कि आप जो कि एक शुभ तिथि पर मथुरा में जन्म लिए और जिन्होंने कि धनुष को तोड़ दिया और जिन्होंने उस उग्र सांप के फणों के ऊपर नृत्य किया, मैं आपके बारे में गीत गाता हूं कि आप सदैव जिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन से धनुष का को तोड़ दिया था? वो शिव जी का धनुष ने, श्री राम ने तोड़ा था। लेकिन जब इंद्रदेव के धनुष के समान वो शक्तिशाली था, लेकिन कंस ने इस धनुष को यहां पर रखा था। श्री कृष्ण आए उस समय केवल एक छोटे से बालक थे और उन्होंने आसानी से इसको पकड़ दिया अपने करकमलों में और उसको तान कर फिर दोनों दो भागों में तोड़ डाला। और इतना भीषण आवाज आया वहां पर कि कंस जो है, कंस के हृदय में बहुत भय बैठ गया। कंस को पता चला कि अभी कृष्ण और बलराम यहां पर आ गए हैं। सारे ब्रह्मांड को भेद करके आवाज बाहर निकली, ऐसे प्रतीत हो रहा था। और फिर इस तरह से स्तुति करते हैं पेरियालवार भगवान की और कहते हैं कि आपकी सेवा करते करते, आपके पवित्र नामों का उच्चारण करते करते, इसी तरह से मैं आपको आशीर्वाद देता रहूंगा कि आप हमेशा जिए, आप हमेशा जिए। तो ये पेरियालवार की प्रार्थना जो है, ये नालायीर दिव्य प्रबंधम में विशेष माना जाता है, क्योंकि अन्य प्रार्थनाओं में ऐसे आशीर्वाद भगवान को देना यह प्राप्त नहीं होता, ये पाया नहीं जाता। बल्कि पेरियालवार जो है वात्सल्य भाव में अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ समझकर वो आशीर्वाद दे रहे हैं। अलग अलग रस जो है भक्ति के, उनके विशेष विशेष गुण होते हैं। और सख्य रस में, सख्य रस दास्य रस के इसलिए श्रेष्ठ है कि सख्य रस में भगवान के प्रति समानता की भावना होती है, जबकि दास्य रस में भक्त अपने आप को निम्न श्रेणी पर समझता है और भगवान को अपने आप से श्रेष्ठ समझता है। भक्त अपने आप को दास समझता है, भगवान को प्रभु समझता है। ये दास्य रस की विशेषता है। परंतु सख्य रस में ये भिन्नता चली जाती है, ये ऊंच नीच की भावना चली जाती है और केवल एक समानता, एक एकता की भावना रहती है कि दोनों ही भगवान और भक्त एक स्तर पे हैं, ऐसे भक्त मानते हैं। और आगे चल के जब वात्सल्य रस की प्राप्ति होती है तो उस समय भक्त समानता की बात तो दूर है, वो तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ समझता है और वो सोचता है कि भगवान मेरे ऊपर निर्भर है। जैसे दास्य रस में भक्त सोचता है कि मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूं, भगवान मेरे पालक हैं और अगर भगवान मेरा देखभाल नहीं करेंगे तो मैं कैसे रह पाऊंगा, भगवान मेरा पालन पोषण भरण पोषण करने वाले हैं, ये दास्य रस में भक्त सोचता है। परंतु वात्सल्य रस में भक्त सोचता है कि कृष्ण के भरण पोषण के लिए मैं जिम्मेदार हूं, अगर मैंने कृष्ण को खिलाया पिलाया नहीं तो कृष्ण को तबीयत ठीक नहीं रहेगी, बीमार हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये भावना रहती है। भक्त जो है अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ स्तर में मानता है। इसलिए भक्ति में भगवान को अपने ऊपर निर्भर मानता है, इसलिए तो वो भगवान को आशीर्वाद दे सकता है। एक श्रेष्ठ श्रेणी का व्यक्ति ही एक दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकता है। हम किसी हमसे ऊपर रहने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं दे सकते, हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो अगर पेरियालवार उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका मतलब वो वात्सल्य रस में स्थित किए हैं अपने आप को। और फिर इसलिए उनके जो आने वाले जो कविता है इस श्लोक में, तिरुपालंडु में तो केवल 12 श्लोक हैं, लेकिन उनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है पेरियालवार तिरुमोड़ी, जिसमें 460 या 61 श्लोक है। और इनमें ज्यादा करके वो वृंदावन के भाव में इन श्लोकों को लिखते हैं, विशेष करके माता यशोदा के वात्सल्य भाव को वो स्वीकार करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था में उनकी जो अलग अलग लीलाओं का स्मरण करती हैं, साथ साथ में अन्य जो ब्रजवासी हैं उनका भाव ग्रहण करके पेरियालवार सारे वृंदावन को जागृत करते हैं। हालांकि श्री संप्रदाय में ज्यादातर वो लक्ष्मी नारायण को प्राधान्य देते हैं, उस भाव में उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पेरियालवार को वृंदावन के श्री कृष्ण बहुत पसंद हैं, उनके वो इष्ट हैं, इसलिए हमेशा उनके बारे में ही वो कहते हैं। और आगे चल के हम देखेंगे कि उनकी पुत्री जो कि अंडाल है, जिनका नाम है अंडाल, जो 9वें नंबर के आलवार हैं, वो भी इसी प्रकार से श्री कृष्ण वृंदावन के कृष्ण से आकृष्ट हुई, लेकिन वो तो श्रृंगार रस में थी, श्रृंगार रस माधुरी रस में, जबकि पेरियालवार वात्सल्य रस में थे भगवान के प्रति। तो फिर इस तिरुमोड़ी पेरियालवार तिरुमोड़ी में अलग अलग श्लोकों में पेरियालवार भगवान श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का वर्णन करते हैं, विशेष करके जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं गोकुल में, तो उस समय नंदोत्सव मनाया जाता है और सारे गोकुल के निवासी वहां पर आकर बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। और फिर एक दूसरे के ऊपर दही दूध इत्यादि घी सब फेंकते हैं सब जगह, और साथ साथ में फिर हल्दी तेल वगैरह से वो भी छिड़कते हैं एक दूसरे के ऊपर। हल्दी तेल इत्यादि ये सब शुभ चीजें मानी जाती हैं। इसका मतलब है, प्रभुपाद समझाते हैं, कि वृंदावन का ऐश्वर्य दूध दही घी ऐसे चीजों का था, क्योंकि उनके पास इतना सब था कि वो ऐसे उत्सव में आके वो मटको मटके भर के वो दूध दही इत्यादि फेंक रहे थे। आजकल दूध वगैरह घी इतना महंगा हो गया है, वैसे शुद्ध कोई घी मिलता भी नहीं है, इसमें कौन सा गाय का घी है और कैसा भैंस का घी कहना मुश्किल है, सब मिलावटी चीज होते हैं, पानी से मिलाते हैं, भैंस के दूध का से मिलाते हैं। लेकिन वृंदावन का ऐश्वर्य, वृंदावन की संपत्ति ये है, भरपूर प्रचुर मात्रा में घी दूध दही लस्सी छाछ जितना चाहिए उतना पीते थे। ऐसा कहीं भागवत में वर्णन नहीं है कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे के घर में जाता है तो उसको चाय कॉफी पिलाते, ऐसा नहीं, केवल दूध या दही लस्सी। एक भक्त हमको बता रहे थे कि जब वो पहली बार उत्तर भारत में गए, जहां की बहुत दूध उपलब्ध है, एक स्थान में बहुत सारे गाय हैं, वहां गायों के प्रति बहुत अच्छी भावना है लोगों की, यहां इतना हम दक्षिण भारत में नहीं देखते हैं, लेकिन वहां जब वो एक जगह वो गए तो लस्सी पीने के लिए, तो लस्सी उन्होंने दी इतने बड़े एक ग्लास में कि उन्होंने उस दुकानदार से पूछा कि ये तुम फ्लावर पॉट में दे रहे हो कि हमको ग्लास में दे रहे हो, इतने बड़े ग्लास में वो लस्सी उनको पिला रहे थे। तो ये आज भी वृंदावन में यही है, आप जहां भी जाएंगे वृंदावन में तो आपको लस्सी छाछ सब पिलाएंगे, दूध वगैरह सब पिलाएंगे। ये सब चाय कॉफी की बात है, ये सब आधुनिक जमाने की बात है, केवल 100-200 साल पहले की बात है, अंग्रेजों ने ये सब चालू किया। बेलगाम में भी ऐसे कहा, यहाँ के भक्त बताते हैं कि मुफ्त में चाय वो पैकेट बांटते थे लोगों में ताकि वो पी के उनको आदत पड़ जाए। तो ये है वृंदावन का ऐश्वर्य। तो इस सुंदर दृश्य का की कल्पना करते हैं पेरियालवार। जन्माष्टमी के समय हम भी गाते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ये नंदोत्सव का दृश्य पेरियालवार इसकी कल्पना कर रहे हैं और सुंदर श्लोकों में उसकी इसका वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि मानो वो अपने आंखों के सामने इस दृश्य को देख रहे हैं। और फिर यशोदा मैया के भाव में वो शिकायत कर रहे हैं कि मेरे बच्चे में कितनी शक्ति है, जब उसको मैं पालना में या हिंडोला में मैं उसको रखती हूं तो हिंडोले को जब लात मारता है वो, तो ऐसे लगता है कि ये पालना जो है टूट जाने वाला है। कभी कभी मैं उसको कमर में पकड़ती हूं तो ऐसे लात मारता, कभी कभी मेरे लगता है कि कमर टूट जाएगा। जब मैं मेरे छाती से उसको लगाकर पकड़ती हूं, मेरे पेट में लात मारता है, तो न जाने कहां से उसको इतनी शक्ति आती है। मैं ये शक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, इतनी ज्यादा शक्ति मेरे बच्चे में, क्योंकि छोटे से बच्चे में इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे छोटे बच्चे तो लात मारते हैं, मुक्का प्रहार करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन माता यशोदा कहती है कि इस बच्चे में तो कुछ अद्भुत शक्ति है और मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान के अधिक शक्ति का प्रदर्शन से वात्सल्य भाव में कुछ मिश्रण हो जाता है। इसलिए माता यशोदा को यही देखना है कि ये तो छोटा सा बच्चा है। इसलिए फिर आगे चल के वो स्मरण करते हैं माता यशोदा का भाव, कि कब श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से उनको कभी मारते थे या कुछ पीठ पे हाथ रखते थे तो कैसे उनको आनंद आता था। तो ये वात्सल्य भाव को पेरियालवार बड़े भक्ति भरे शब्दों में स्मरण करते हैं। और फिर माता यशोदा अन्य गोपियों को निमंत्रण देती हैं कि आओ हमारे घर में आओ और हमारे बच्चे को देखो। और फिर कैसे श्री कृष्ण के शरीर के अलग अलग अवयवों को दिखाती हैं और कहती हैं कि हर एक अवयव देखो कितना सुंदर है, देखो ये श्री कृष्ण की उंगली। फिर श्री कृष्ण की उंगली के बारे में बहुत ज्यादा बात करती हैं। फिर श्री कृष्ण के हाथ, फिर उनका पेट, फिर उनका वक्षस्थल, फिर उनके कंधे, उनके आंख, उनके कान, प्रत्येक अव्यय के बारे में वो चर्चा करती है गोपियों के साथ। तो कहने का मतलब है कि कृष्ण कथा कैसे ब्रजवासियां करती थी, इससे हमें प्रतीत होता है, हमको ज्ञात होता है कि कृष्ण कथा तरह तरह से हो सकता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन जगह जगह आता है, दिखने में आता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर जो है ये साधारण नहीं है, ये दिव्य है। और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का वर्णन करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और इस शरीर, इस दुनिया के सौंदर्य को देखने की इच्छा फिर नहीं होती। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को किसी ने देख लिया, फिर इस संसार के सौंदर्य से उस व्यक्ति को कुछ लेना देना नहीं होता है। फिर आगे पेरियालवार भगवान कृष्ण को माता यशोदा के भाव में लोरी सुनाती है। लोरी जानते हैं ना आप क्या है, जो बच्चे को सुलाते समय गीत सुनाया जाता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे वैदिक संस्कृति में, इसको साधारण मत समझिए। ये लोरियों के पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कोई बता सकते हैं इस लोरियों के पीछे क्या विज्ञान है, क्या विज्ञान हो सकता है इसके पीछे? स्वप्न पड़े ठीक है, लेकिन और थोड़ी गहराई में जाइए हो जाते हैं। और बोलिए बात है, वही संस्कार पड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोरियां ज्यादा से भगवान से संबंधित हुआ करते थे और भगवान के अलग अलग लीलाओं के। और वो भगवान ने ऐसे उस असुर को मारा, भगवान ने ऐसे मक्खन चोरी किया, भगवान ने ये किया, तो बच्चों को ऐसे गीत में, मीठे मीठे गीत में उस बच्चे को सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे की बुद्धि को समझ में आता है कि माँ क्या बोल रही है, लेकिन उसकी आत्मा को समझ में आता है, आत्मा के लिए है ये। और ऐसे सब चीजें सुना सुना के बच्चे के मन में ये संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और ये भाव बैठ जाता है, ये वृत्ति, भक्ति की वृत्ति उसके अंदर बैठ जाती है। ये सब संस्कार है। कई बार आप सुन चुके हैं कि वास्तव में संस्कार गर्भाधान से होता है। गर्भाधान से पहले ही माता पिता को यह संस्कार करना पड़ता है, अपने चित्त को तैयार करना पड़ता है भगवान का नाम उच्चारण करके इत्यादि। उसी प्रकार से जब बच्चा गर्भ में होता है, बच्चा जन्म भी ले लेता है, तो ऐसे लोरियां सुनाई जाती हैं। लेकिन आजकल बच्चों को क्या लोरियां सुनाई जाती हैं, टीवी के विज्ञापन है ना, माँ के गर्भ से जन्म लेते लेते बच्चा जो है कोई विज्ञापन गाते गाते बाहर आता है, आजकल का बच्चा जो होता है मैटरनिटी होम के अंदर। तो ऐसे लोरी माता यशोदा सुना रही है और इसमें वो कल्पना कर रही है कि सारे ब्रह्मांड से अलग अलग देव देवी आ रहे हैं और वो श्री कृष्ण को भेंट दे रही हैं। जैसे कि जो हिंडोला है या पालना है श्री कृष्ण का, माता यशोदा कल्पना कर रही हैं कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने आकर ये भेंट दी है। साथ साथ शिव जी आए हैं अपने नंदी बैल के ऊपर सवार होकर, अपना डमरू बजाते हुए, और उन्होंने क्या भेंट दिया है श्री कृष्ण के लिए, कमर पट्टी जो कि बिल्कुल सोने की बनी हुई है। साथ साथ इंद्र ने उनको सोने के नुपुर प्रदान किए, कुबेर ने तरह तरह के अनमोल रत्नों के दिए हुए हार, और लक्ष्मी देवी लाए तुलसी की माला इत्यादि। तो ऐसे अलग अलग देवी देवताओं ने भेंट प्रदान किए। माता यशोदा जो है ये सब देख रही हैं अपने स्वप्न में, और फिर किस तरह एक साधारण बच्चे की तरह श्री कृष्ण फिर उठने लगते हैं, चलने लगते हैं। पहले उनको किसी चीज का आधार लेना पड़ता है, वही चीज जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के लिए आश्रय है, आधार है, वही अब उठने के लिए एक किसी चीज का आधार लेकर उठ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है स्व आश्रय आश्रय, कि जो अपने ही आश्रय है, स्व आश्रय आश्रय। हम सब किसी न किसी आश्रय के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब देखिए, हम यहां पर जमीन पर बैठे हुए हैं, ये मंदिर है, मंदिर की इमारत है, और ये मंदिर भूमि पर आधारित है, और ये भूमि किस पर आधारित है, भगवान की ओजस शक्ति से। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं हरेक ग्रह के भीतर हरेक लोक के भीतर प्रवेश करता हूं, और हरेक लोक को अपने अपने चक्र में, कक्षा में मैं स्थित करता हूं मेरी ओजस शक्ति की वजह से। तो पृथ्वी अपने चक्र में क्यों चल रही है, भले वैज्ञानिक इसको गुरुत्वाकर्षण कहें, ग्रेविटी इसको कहें, परंतु ये ग्रेविटी आई कहां से, किसकी शक्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की हुई है। तो ये सारे लोक, ये सारे ब्रह्मांड, ये अनंत शेष के फणों के ऊपर स्थित हैं, और अनंत शेष किसके ऊपर स्थित हैं, वो उनके आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से वही भगवान जो कि सारे सृष्टि के आश्रय हैं, आधार हैं, वो वृंदावन में ऐसी लीला करते हैं कि मानो वो उठ भी नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनको किसी चीज का आश्रय चाहिए। तो ये चमत्कार की बातें हैं। और जो व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को जानता है और फिर इन लीलाओं को समझता है, उसके हृदय में रस अधिक बढ़ जाता है, और इस हद तक बढ़ता है कि एक दिन एक जन्म में वो व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को भी भूल जाएगा और केवल भगवान के सुंदर मधुर लीलाओं का स्मरण ऐसे करेगा। वास्तव में ये जो बाल लीलाएं हैं, ये भी केवल भौतिक जगत में दिखाई पड़ती हैं। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का नित्य रूप जो है वो किशोर रूप है, नित्य एक नव युवक है वो। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ना तो मथुरा या द्वारका का रूप धारण करते हैं और न ही एक छोटे से बच्चे का, वो हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, और ऐसे अवस्था में वो वात्सल्य रस, सख्य रस और श्रृंगार रस, दास्य रस, सारे रसों का आस्वादन करते हैं। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस भौम वृंदावन में, इस भौतिक जगत के भीतर जो वृंदावन है इसमें प्रकट होते हैं, तो अलग अलग अपने उम्र के स्तरों में वो अलग अलग रसों का स्वाद लेते हैं। जैसे कि जब वो कुमार अवस्था में रहते हैं तो अधिकतर वात्सल्य रस का स्वाद लेते हैं, जब वो पौगंड अवस्था में पहुंच जाते हैं तो अधिकतर सख्य रस का स्वाद लेते हैं, और जब किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं तो प्राधान्य होता है श्रृंगार या माधुर्य रस का। परंतु गोलोक वृंदावन में, वहां पर श्री कृष्ण क्योंकि नित्य किशोर रूप में रहते हैं, इसलिए तीनों ही रसों का एक साथ आस्वादन करते रहते हैं। जब घर में रहते हैं तो माता यशोदा बहुत लाड़ प्यार करती है, खिलाती पिलाती हैं, और फिर वो वन में चले जाते हैं, गायों को चराते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, ये सख्य रस का भी आस्वादन करते हैं, और फिर गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, अर्थात श्रृंगार रस का स्वाद लेते हैं। तो यहां पर माता यशोदा पेरी अलवार, माता यशोदा के द्वारा ये स्मरण कर रही हैं उन सारे लीलाओं का, इसमें श्री कृष्ण उठते हैं, बैठते हैं, चलने सीखते हैं एक साधारण बच्चे की तरह, और फिर माता यशोदा शोक के भाव में है, क्या शोक है माता यशोदा को कि अरे वही बच्चा जिसको मैंने 10 महीने मेरे गर्भ में रखा, अब वही उसी बच्चे को मैं अभी वन में भेज रही हूँ, जिस वन में रास्ते में कांटे हैं और पत्थर हैं जो कि मेरे बच्चे के नन्हे मुन्ने चरण कमलों को चुभेंगे, उसको दर्द पहुंचेगा। तो शोक कर रही है कि इस बच्चे को यहाँ वृंदावन की शरारत से दूर रखने के लिए मैंने वन में भेज दिया, मेरा धिक्कार हो। मैंने ताकि वो गोपियों को छेड़ता था, छोटे छोटे बच्चियों को जाके हरकतें करता था, अन्यों के घर में जाके दूध मक्खन चोरी करता था, तो ऐसे चीजों से दूर रखने के लिए उसे मैंने भेज दिया। लेकिन अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं कितनी क्रूर हूं कि जंगल में न जाने क्या हो रहा होगा। तो इस प्रकार से माता यशोदा अपने ही मन में, जबकि कृष्ण चले गए हैं वन में, वो शोक कर रही हैं। जब श्री कृष्ण छोटे छोटे थे तो उस समय श्री कृष्ण कोई वस्तु उठाते और जब गाय के पास जाते तो अपने हाथों को ऐसे थपथपाते और अपने पिता से कहते कि अब मैं शक्तिशाली हो गया हूँ, अब मैं गायों को ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे वही करना चाहते हैं जो कि बड़े करते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे सारे पिता और अन्य जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं वृंदावन के, वो सब गायों को लेकर जा रहे हैं, तो कृष्ण को भी इच्छा हुई हमको भी जाना है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे शक्ति दिखाई, देखो मेरा कितनी शक्ति है मेरी। तो थोड़े समय तक तो नंद महाराज ने नहीं भेजा उनको, हालांकि माता यशोदा नंद महाराज का हृदय भारी हो गया था, कैसे भेजेंगे। फिर भी नंद महाराज ने सोचा कि हम लोग तो वैश्य हैं, गोपालक हैं, ये हमारा धर्म है, अगर अभी से उसको ये अच्छी प्रशिक्षण नहीं दिया तो आगे चल के कैसे सीखेगा। तो ठीक है, उसके छोटे छोटे बछड़े जो हैं उसको दे दें। फिर पहले वो बछड़ों के साथ चले गए और जब पौगंड अवस्था में प्रवेश किया उन्होंने, 5 साल खत्म हो गए, उस समय उनको गाय दिए गए, बड़े गाय, बड़े गायों को का विचरण करने के लिए वो ले जाते। और ये उत्सव क्या है, ये गोपाष्टमी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि पर फिर ये हुआ गोपाष्टमी। बहुत सुंदर महोत्सव है, वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत मधुर उत्सव है। और उस समय श्री कृष्ण को एक गोप बालक के रूप में सजाते हैं, जैसे वेणु गीत चर्चा करते समय हम बता रहे थे कैसे गायों के पिछले पैरों को बांधने वाले रस्सी वगैरह निर्योग पाश वो अपने कंधों पे या कभी अपने पगड़ी में बांध के लेकर जाते हैं, ऐसे सजाते हैं श्री कृष्ण को गोपाष्टमी के समय। तो श्री कृष्ण के बारे में ऐसे शोक कर रही हैं माता यशोदा। आगे चल के गोपियों की शिकायत पेरी अलवार चर्चा करते हैं कि ये गोपी आके माता यशोदा से शिकायत करती है कि आपके बेटे ने मेरे ऊपर मिट्टी फेंक दिया, एक बेटे ने आकर हमारे कपड़े चुरा लिए आपके बेटे ने, ऐसे एक एक करके शिकायत कर रहे हैं। और पेरी अलवार ऐसे स्मरण करते करते भाव के सागर में डूबते जा रहे हैं। और फिर आपस में गोपियां अब शोक कर रही हैं अपने कन्याओं के लिए, अपने पुत्रियों के लिए। और गोपियां क्या शोक कर रही हैं, कह रही हैं कि देखो मेरे बच्ची जो है इतनी छोटी है, लेकिन न जाने उसको क्या हो गया है, जब ये श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखती है, जिसके एक कान में एक कर्णिकार फूल है, जिसके गले में वनमाला है और जिसके काले घुंघराले बाल जो है उसके सुंदर मुख पे आते हैं, तो वो इतनी मोहित हो जाती है कि जब वो श्री कृष्ण के सामने हो जाती है, तो जब श्री कृष्ण सामने से आ रहे होते हैं तो रास्ते से बाहर निकलने के बजाय वो और सीधे आगे चले जाती है, उसको पता नहीं चलता है। और दूसरी गोपी वो कहती, शिकायत करती है अन्य गोपियों से, वृंदावन ये सब बातचीत चल रही है, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि देखो मैं मेरी बच्ची के बारे में बहुत चिंतित हूं, मेरी बच्ची इतनी छोटी है, अभी तक उसने खिलौने त्याग नहीं किए हैं, अभी तक उसे ठीक से बोलना नहीं आता, लेकिन निर्लज होकर बड़े गोपियों के सामने आके वो श्री कृष्ण के सुंदर बालों का वर्णन कर रही है। अरे क्या होगा मेरे बच्ची का, फिर समाज में कौन इसे शादी करेगा, क्या होगा। और इस प्रकार से दूसरी और एक गोपी आती है, कहती है कि अरे कृष्ण ने तो हमारे बच्ची को चोरी कर लिया, अभी हमारी बच्ची जो है बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो केवल कृष्ण के बारे में ही बात करती रहती है। और एक गोपी और एक तरह से शिकायत करती है कि मेरे बच्ची को ना जाने क्या हो गया, वो चुटकुला आपको सुनाया था एक बार हमने, कि ये गोपी दूसरे गोपी को कह रही है कि न जाने क्या हो गया इसके ऊपर, शायद भूत सवार हो गया इसके ऊपर। और दूसरी बुजुर्ग गोपी आके कहती है, अरे नहीं भूत नहीं, नंद का भूत सवार हो गया इसके ऊपर, है ना। तो सारे गोपियां जब से वो छोटे छोटे बच्चियां थी तब से श्री कृष्ण उनके ऊपर छा गए थे, और छोटे से अवस्था में ही ये सारे गोपियों की माताएं जो हैं, जो वरिष्ठ गोपियां हैं, वो अपने अपने शिकायत प्रस्तुत कर रही हैं, और फेरियालवार जो हैं इनके बारे में सब सोचकर बड़े आनंदित अवस्था में अपने इस तिरुमोली प्रार्थना में वो बोल रहे हैं। इस प्रकार से ये अनेक 460 श्लोकों का की कविता है। और पेरियालवार जो 8वें नंबर के आलवार हैं, उनके जीवन में और एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसका वर्णन हम अगली एकादशी को करेंगे, जबकि उनके पुत्री आंडाल का जन्म हुआ। कौन थी ये आंडाल, कैसा उसका जन्म हुआ और आंडाल के जीवन में कौन सी अद्भुत लीलाएं हुई, इनके बारे में हम अगली एकादशी को सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अब दर्शन होगा।